آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
देश में कोरोना का संक्रमण कहर बरपा रहा है। इस संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मंगलवार को यह संख्या 3,60,000 को पार कर गई। कोरोना के चलते देश के कई शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लखनऊ, आगरा से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर कहा।
दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलने चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं।
मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं।
पेशेंट सीरियस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है उसको या तो ऑक्सीजन का बेड चाहिए और मैक्सिमम लोग आईसीयू बेड ढूंढ रहे हैं। और अभी पूरी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग आईसीयू बेड खाली खत्म हो चुके हैं। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है और एक ही अपना जो दिल्ली का मेन रामलीला ग्राउंड है। तो 500 आईसीयू बेड उधर बन रहे हैं और 500 आईसीयू बेड इधर बन रहे हैं और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी वाले कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं। तो लगभग 1200 आईसीयू बेड्स, प्रॉपर आईसीयू बेड्स जो हैं, ये हमारे 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को काफी राहत मिलेगी।
दिल्ली के मरीज इलाज के लिए हरियाणा के अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दावा है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 70% से ज्यादा मरीज दिल्ली के हैं।
गुड़गांव और फरीदाबाद में लगभग 70% लोग दिल्ली से आए और अब तो रोहतक में, करनाल में, अम्बाला तक दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं। हमने सभी जिला के उपायुक्तों को कह दिया कि एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट की जाए। हम गुड़गांव में भी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी हर जिले में एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं और हमारे जितने MBBS के और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1200-1300 के करीब हैं वो हमारे पास रह रहे हैं। उन सब की हम ड्यूटियां लगा रहे हैं कि ये जो हम एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको वो चला।
हरियाणा में संक्रमण लगातार पांव पसारता जा रहा है। यहां आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की खबरें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं,
जिस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है।
मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संकट गहराया हुआ है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी यहाँ भी है। राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बारे में कहते हैं,
युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें।
राज्य के कई पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बारे में बताते हैं,
बाकी ठीक हो गए और 111 अभी वर्तमान में अलग अलग जगह पे भर्ती हैं। 111 में से 106 अच्छी हालत में, 5 आईसीयू में हैं।
संक्रमण को काबू में करने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज किया जा रहा है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग का कहना है। वहीं कई राज्यों ने पर्याप्त टीका उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। महाराष्ट्र में टीके की कमी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य को 12 करोड़ टीके की जरूरत है।
हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बनाने वाले कंपनीज है, वन इज सीरम इंस्टीट्यूट एंड सेकेंड इज भारत बायोटेक, दोनों को भी चिट्ठी लिखी है। आरोग्य स्वास्थ्य विभाग ने चिट्ठी लिखी है, हमारे प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी है कि हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है।
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि टीकाकरण की तैयारियां तो की जा चुकी हैं, पर टीके का अभाव है।
हर एक के वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए, वो 18 के लोगों के लिए, जो 18 से आने वाले लड़का लड़की या नागरिक उनके लिए। तो मुझे लगता है सब तैयारी अभी हमने चालू भी की है, लेकिन उतनी मात्रा से वैक्सीनेशन आना चाहिए और वो महानगर पालिका को टेंडर करके या खरीदना ये अलाउ नहीं है, वो राज्य सरकार और केंद्र ही करेंगे। तो जैसा जितना हमें वैक्सीनेशन मिलेगा, वैक्सीन आएगा हमारे पास, वैसे उस तरह के हम काम करने वाले हैं, क्योंकि आज एक सेंटर चालू किया, कल बंद हुआ, परसों चालू हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और अब बात भारत के पूर्वोत्तर में आज सुबह आए भूकंप की। इसका केंद्र असम के सोनितपुर जिले में था। 6.4 तीव्रता के इस भूकंप के झटके को उत्तर पूर्व के अलावा बिहार और उत्तर बंगाल में भी महसूस किया गया। गुवाहाटी सहित कई जगहों से दीवारें टूटने और दरारें आने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इसमें अभी तक किसी के जान जाने की खबर सामने नहीं आई है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।